ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तथा श्रीमद्भागवतम स्कंद संख्या 7 अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 42 पीछे द्वारा ये सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदा आपनोति इहया दुःखं अनियायः आवृतः सुख आवृतः सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मण्यः सदा आपनोति दुःखं अनिहाया सुखावृत सुखाय तथा कथित जीवन के उच्चतर स्तर के द्वारा सुख प्राप्त करने के लिए दुख मोक्षाय दुख से छुटकारा पाने के लिए संकल्प संकल्प यह इस संसार में कर्मिणः आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील जीव का सदा सदैव आपनोति प्राप्त करता है। इहया कर्म या महत्वाकांक्षा द्वारा दुखम केवल दुख अनिहाय आर्थिक विकास न चाहते हुए सुख सुख से आवृत ढका हुआ। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ शील बहुपाद द्वारा। शील बहुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। इस भौतिक जगत में प्रत्येक भौतिकतावादी सुख का इच्छुक रहता है और अपना दुख कम करना चाहता है, अतएव वह तद अनुसार कर्म करता है। किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। जो ही वह सुख के लिए कार्य प्रारंभ कर देता है त्यों ही उसकी दुख की अवस्था प्रारंभ होती है। तात्पर्य बढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसा कि भगवद गीता में वर्णन हुआ है, प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रत्येक बद्ध जीव प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के आदेश अनुसार प्रकृति से एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषि अर्जुनः तिष्ठति रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रूढानि मायया। हे अर्जुन, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन सारे जीवों को घुमा रहे हैं मानो वे भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आरूढ़ हों। भगवद गीता 18:61। भगवान परमात्मा के रूप में हरेक के हृदय में स्थित हैं और जीव जैसी इच्छा करता है उसी के अनुसार भगवान उसे कर्म करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह शरीर एक यंत्र के समान है जिसके द्वारा मनुष्य सुख की मिथ्या इच्छा के अनुसार घूमता रहता है और विभिन्न योनियों में जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से पीड़ित होता रहता है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी योजना या कामना से अपने कार्य आरंभ करता है किंतु उसे अपनी योजना के प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई सुख प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत जो ही वह अपनी योजना के अनुसार कार्य प्रारंभ करता है वह तुरंत ही कष्टमय जीवन शुरू हो जाता है। अतः मनुष्य को जीवन की कष्टप्रद अवस्था को दूर करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हृदय मन्यते। यद्यपि मनुष्य अपनी मिथ्या कामना के अनुसार कर्म करता रहता है, किंतु वह सोचता है कि वह अपने कर्मों से वह अपनी भौतिक स्थिति सुधार सकता है। वेदों का आदेश है कि मनुष्य को चाहिए वे न तो सुख बढ़ाने का ना ही दुख को कम करने का प्रयास करे, क्योंकि ये सब व्यर्थ होता है। तस्यैव हितोः प्रतीत कोविदः। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि आर्थिक विकास के लिए, जिसको कर पाना असंभव है। बिना प्रयास के ही उसके भाग्य में लिखा सुख तथा दुख मिलेगा, कोई इसे बदल नहीं सकता। अतएव श्रेयस्कर होगा कि मनुष्य अपना समय कृष्ण भावनामृत आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में लगाए। मनुष्य होकर उसे अपने समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए। ये अच्छा होगा कि तथा कथित सुख की कामना किए बिना कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में इस जीवन का उपयोग किया जाए। इस भौतिक जगत में प्रत्येक भौतिकतावादी सुख का इच्छुक रहता है और अपना दुख कम करना चाहता है, अतः तद अनुसार कर्म करता है। किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। जो ही वह सुख के लिए कार्य प्रारंभ कर देता है, उसके दुख की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इसका अनुवाद और इसका तात्पर्य जो हमारा आज का जीवन शैली है, जो जीवन चल रहा है, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। हमारे अब आ रही है आज का जो युग है जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें हमें प्रत्येक मनुष्य को सुख चाहिए। कोई ऐसा है जिसे सुख ना चाहिए हो? तो यहाँ जो है इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा गया है, बहुत ही सुंदर ट्रांसलेशन दिया है प्रभुपाद ने, कि प्रत्येक भौतिकतावादी सुख का इच्छुक रहता है और अपना दुख कम करना चाहता है। दोनों सिचुएशंस में आप सुख चाहते हैं, आपकी डिमांड है कि ये मुझे ये करने से सुख मिलेगा, ये करने सुख मिलेगा, ये करने सुख मिलेगा, ऐसा करूंगा तो सुख मिलेगा, ये आ जाएगा तो सुख मिलेगा, ये मिल जाएगा तो सुख मिलेगा। साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि ये न मिले तो दुख ना हो, अर्थात सुख हो जाए। ये ना मिले, ये ना करना पड़े, ये ना मिले, ये ना करना पड़े तो मेरे को दुख की स्थिति नहीं आएगी, और दुख की स्थिति नहीं आएगी तो ऑटोमेटिकली सुख में कन्वर्ट हो जाएगा, सुख की स्थिति आ जाएगी। इसमें जो है इस श्लोक के अंदर बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया गया है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक भौतिकतावादी सुख का इच्छुक रहता है। कभी दुख मांगा है किसी ने? मांगा है इतिहास में, पुराणों में? मांगा ना। किस लिए मांगा? कुंती महारानी ने दुख की कामना करी है। मैं चाहती हूं कि विपदाएं मुझ पर बार बार आए, तो विपदाएं आने का लाभ क्या है? विपदाएं जब आती हैं तब हम भगवान का स्मरण करते हैं। तो कुंती महारानी ने इससे भी एडवांस्ड बात कही कि जब लगातार निरंतर आपका स्मरण होता है फिर आप आते हैं। अभी हमारे साथ उस स्थिति नहीं, हम लोग अभी उस लगातार अनन्य चेता सत्यम योग माम स्मृति नित्यशय लगातार भगवान के स्मरण के प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, परंतु इन स्पाइट ऑफ दिस ये बताइएगा कि भागवतम के अंदर कुंती महारानी ने जो ये संदेश दिया है, जो बात कही है, कितने लोगों ने पढ़ी है इस संसार में और कितने लोगों ने समझी है? एक है भौतिकतावादी जी, वो लोग जो इस संसार में हम सबको प्रत्यक्ष देखते हैं, उनमें किसी का इंटरेस्ट शास्त्रों में है ऐसा बड़ा कम दिखाई देता, बड़ा लिमिटेड, कितना है, आटे में नमक की बराबर, 0.0000, कितने जीरो लगाएं, अनगिनत, कितने जीरो लगाएं, अनगिनत, मतलब इतने कम लोग जो है वो स्क्रिप्चर्स को, वेदों को, भागवतम को, भगवत गीता को, चेतन चरितामृत को सुनने का, पढ़ने का या समझने का प्रयास करते हैं। प्रयास किया, सुना, सुनने के बाद समझते कितने लोग हैं? सुन तो लिया, यहां से सुना, यहां से बाहर, ऐसे ही होता है ना, बाहर जाने के बाद अंदर क्या बोला था याद नहीं रहता। चलो सुन लिया, यहां से बाहर नहीं भी निकाला, उसको यहां रख लिया, यहां रख लिया, परंतु यहां उसका इस्तेमाल नहीं किया। कुंती महारानी ने इतनी सुंदर बात कही, उसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, जब किसी से पूछते हैं कि कितने लोगों को सुख चाहिए तो सब हाथ खड़ा कर देते हैं, कोई दुख की कामना नहीं करता, कोई दुख मांगता है? इतनी जगह हम लोग प्रचार, सॉरी, इतनी जगह हम लोग प्रचार करते हैं, इतनी जगह जाते हैं, जब पूछते हैं हाँ जी कितने लोगों को सुख चाहिए, सब हाथ खड़े, कितने लोगों को दुख चाहिए, सबके हाथ नीचे, किसी ने दुख, हालांकि सब सुन रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब सुन रहे हैं, ठीक है, नए भी होते हैं, पर कम से कम पुराने लोग जो हैं, जो सुन रहे हैं, जो सुन समझ रहे हैं, वो तो कहें हाँ जी मुझे दुख चाहिए, क्या भाई बिरला एक आधा कभी मतलब भूले भटके किसी का हाथ खड़ा दिखाई दे जाता है कि हाँ जी मुझे दुख चाहिए। यहां जो है इसमें एक बात और बड़ी सुंदर कही गई है अगले ही वाक्य में, किंतु वास्तव में वह तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। परपट के अंदर जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है बड़ा सुंदर तरीके से, दुख की प्राप्ति कब होती है? जब हम साधारण भाषा में बात करें कि सुख क्या है और दुख क्या है, सुख की अनुभूति कब महसूस हो, कब अनुभूति होती सुख की? जब हालात, परिस्थितियां, सरकमस्टांसेस आपके मन और शरीर के अनुकूल हो, फेवरेबल, मन को बड़ा अच्छा लगा, ठंडी हवा आ रही है, शरीर को बड़ा अच्छा लग रही है, निद्रा आ रही है, नींद आ रही, बहुत बढ़िया नींद आ रही, गर्मी आ गई, पंखा बंद हो गया तो कसमसाने लगे, शरीर के प्रतिकूल परिस्थिति आती है, शरीर और मन के अनुकूल आते हैं हालात, परिस्थितियां, सरकमस्टांसेस तो सुख मिलता है, उसके प्रतिकूल आते हैं हालात, परिस्थितियां, सरकमस्टांसेस तो दुख की अनुभूति होती है। यहां पर जो है एक बात कही जा रही है कि सुख के लिए प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दुख के लिए तो कोई प्रयास करता नहीं, कोई व्यक्ति दुख के लिए प्रयास करता है कि मैं ये काम करूं और मुझे दुख मिले, ऐसा कोई कोशिश करता है क्या? सुख के लिए प्रयास करते हैं। समस्या ये आती है कि हम लोग सुख की कामना करते हैं, डिजायर रखते हैं, परंतु जब वो सुख प्राप्त नहीं होता है तो हमें दुख होता है। अब अगर जो है व्यक्ति सुख के लिए प्रयास न करे, सुख की कामना न करे, तो वो दुख में आएगा कि नहीं आएगा? यही बात जो कही जा रही है, किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं। क्योंकि एक स्टेज आ गई कि आपने जो दुखपूर्ण स्थिति थी उसी दुख के अंदर सुख का एहसास करना शुरू कर दिया। ये मेरी क्या है, ये बात यही कही जा रही है, परपट के अनुरूप समझा रहे हैं कि सुख और दुख दोनों तो आने ही हैं, आपका भाग्य है, आपके कर्मों का फल है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मनुष्य को चाहिए वे ना तो सुख को बढ़ाने का ना ही दुखों को कम करने का प्रयास करे, क्योंकि ये सब व्यर्थ होता है। बिना प्रयास के ही उसके भाग्य में लिखा सुख तथा दुख मिलेगा। आप कोशिश करो, कई बार कहते हैं कि सुख प्राप्त करना है मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसका क्या अंतर, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बताइए मेहनत ना करें। भाई आपको सुख चाहिए, आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए, उसके लिए लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए उसके लिए, वो धन कमाने के लिए मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने आप आ जाएगा क्या, मेहनत किए बगैर आ जाएगा? पैसा चाहिए, आज के युग की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? बड़ा टेढ़ा सवाल है पर बड़ा सिंपल उत्तर है इसका। आंसर इज वेरी सिंपल। जब आपके कर्म के फल मिलने हैं तो भगवान उसी के अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। आप बड़ी मेहनत करते रहते हो, खूब पैसा कमाऊंगा, बिजनेस खोल दिया फ्लॉप हो गया, दूसरा बिजनेस खोला फ्लॉप हो गया, तीसरा खोला फ्लॉप हो गया, एक नौकरी करी निकाल दिया, दूसरी नौकरी करी निकाल, तीसरी नौकरी करी निकाल दिया। आप तो मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर भी नहीं आ रहा, क्यों? ऑफर आई, मेरे यहां आ जाइए, काम है, आप नौकरी करिएगा, चले गए, एक महीने के बाद छुट्टी। दूसरे ने, मैंने नहीं मेहनत करी नौकरी ढूंढने के लिए, मान लीजिए मैंने मेहनत नहीं करी नौकरी को ढूंढने के लिए, स्वतः ही नौकरी का ऑफर मेरे पास आया। अगर मेरे भाग्य के अंदर फ्रिज लिखा हुआ है तो उसी नौकरी से जो मेरे पास आ रहा है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने एक्सेप्ट करने में मेहनत करी है, गया हूँ, इंटरव्यू दिया है, बातचीत करी है या बिजनेस किया है, कार्य किया है मैंने, परंतु अगर उसे फलित होना है, मेरे घर में रेफ्रिजरेटर आना है वो वाला जो मैं चाहता हूँ, उसके लायक पैसा आना है, तो मेरा कार्य जो है सक्सेसफुल होता चला जाएगा। नहीं आना है तो कर्म के फल के अनुरूप वो डाउन आ जाएगा। यही बात जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मनुष्य को ना तो सुख को बढ़ाने का ना ही दुख को कम करने का प्रयास करना चाहिए। जो आपकी डेस्टिनी है, जो भाग्य है, वो आपका कर्म फलों के अनुसार नियत है, परंतु उसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि आप इस जीवन में जो कर्म कर रहे हैं वो आपके आगे का भाग्य बना रहा है। इस जीवन में कर्म करने की आपको स्वतंत्रता है, वो फिक्स नहीं है। हम लोग मान लें कि एक पाप के कार्य में लिप्त हो गए, छोटा सा कार्य है, किसी ने मेरे से झगड़ा कर लिया और मैंने उस झगड़े को रेसिप्रोकेट कर दिया, उसने मुझे 2 लगाए, मैंने उसे 4 लगा दिए, उसने 1 लगाया, मैंने 5 लगा दिए। अब क्या सिचुएशन, उसने मेरे पाप का फल भुगतवाने के लिए मेरे पे अटैक किया, हमला किया, मेरी पिटाई करी, गंदे अपशब्द बोले, रिव्यू किया, अब्यूज किया, गाली गलौज किया, जो भी किया, मतलब मेरे को घाटा दिलवाया, लॉस हुआ, चोरी करी, चकारी करी, डाका मारा, कुछ किया उसने, वो मेरे भाग्य में था, मुझे मिलना था। अगर मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूं तो वो मैं भाग्य जनरेट कर रहा हूं, अपनी कर्म फल का जनरेशन कर रहा हूं। मुझे इतना सोच के जो है संतोष कर लेना चाहिए था कि ये मेरे भाग्य का फल है, उसको भुगतवाने के लिए ये व्यक्ति पाप का कार्य कर रहा है, भगवान ने इसको निमित्त बनाया। मेरे कर्मों के फल को भुगतवाने के लिए ये व्यक्ति निमित्त बना है, इससे पाप का कार्य हुआ है। तो भक्त क्या करेगा? भक्त उस पाप के फल से उसको जो दुख मिलना है उसको बढ़ाने का कार्य करना चाहिए कि उसको कम करने का कार्य करना चाहिए? बहुत छोटी बात। परा दुखा दुखी, दूसरे के दुख में दुखी होना वैष्णव का एक लक्षण है। तो अगर वो व्यक्ति जो है पाप का कार्य कर बैठा है, हालांकि मेरे पाप कर्म को भुगतवाने के लिए है, परंतु उसके पाप के फल को मुझे कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए, मुझे उसे कृष्ण भावनामृत में लाना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, एसोसिएशन देना चाहिए, जिससे वो कृष्ण भावनामृत में आए, उसका कर्म फल जो है वो निष्क्रिय हो जाए, समाप्त हो जाए। ऐसा हम लोग करते नहीं, अभी वो समझ नहीं आई। तो यहां पर जो है प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, यद्यपि मनुष्य अपनी मिथ्या कामना के अनुसार कर्म करता रहता है, किंतु वह सोचता है कि उन अपने कर्मों से अपनी भौतिक स्थिति को सुधार सकता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बिजनेस खोला जी फेल हो गया, दुकान चलाई थी चली नहीं, नौकरी करने गया था जी निकाल दिया गया। प्रयास तो कर रहा है ना, परंतु प्रयास तभी सफल होगा जब आपके कर्म के फल सफलता के अनुरूप होंगे, अदरवाइज प्रयास सफल नहीं हो सकता। यहाँ अनुवाद की अंदर जो है लिखा है कि भौतिकतावादी सुख का इच्छुक रहता है, अपना दुख कम करना चाहता है, इसलिए अतः वह तद अनुसार कर्म करता है। तद अनुसार मुझे सुख प्राप्त करना है तो उस सुख प्राप्त करने के अनुसार कार्य कर रहा हूं। उसके लिए क्या क्या कर मेरे माइंड में आता है, भौतिकतावादी जीव हूं, मेरे को अभी कृष्ण भावनामृत का ज्ञान नहीं है, ऐसी मेरी स्थिति है, तो मैं सोचता हूं अच्छा ये काम करूंगा इससे सुख मिलेगा, ये काम करूंगा लाभ हो जाएगा, ये काम करूंगा ऐसा हो जाएगा, ये काम करूंगा बढ़िया हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, अपनी बुद्धि लगा के मैं उन कार्यों को करना आरंभ कर देता हूं। पर बुद्धि प्योर है या दोषपूर्ण है ये इस पर डिपेंड करता है कि मेरा भौतिक संसार के प्रति कितना आकर्षण है। मुझे रिश्वत नहीं खानी है, मुझे बेईमानी का कार्य नहीं करना है, आई वॉन्ट टू बी ए वेरी ऑनेस्ट मैन, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, मुझे ऑनेस्टी से काम करना है। अरे ऑनेस्टी से काम करूंगा तो फ्रिज कैसे आएगा, एलसीडी कैसे आएगा, मोबाइल कैसे आएगा, तो काम चलेगा नहीं। पोजीशन तो मेरी ऐसी है कि बेईमानी करूं किसी को पता ना लगे और पैसा आ जाए और सारा सामान घर में हो जाए, घरवाली से भी झगड़ा नहीं हो, बच्चों से भी झगड़ा नहीं हो और जिंदगी जो है सुखमय हो जाएगी। किसमें दोष आया? बुद्धि में, इंद्रिया नाम ही चरता यद मन अनुविधेते, बुद्धि के अंदर दोष आ गया। किसकी वजह से? कि मेरा मन इंद्रिय के ऊपर फिक्स हो गया है। यस आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए। वो बुद्धि में दोष ना आए ऐसा बड़ा रेयर होता है, बहुत रेयर है कि व्यक्ति पैसा कमाने की स्थिति पर रहता हुआ भी बेईमानी नहीं करे और अपने जो उसके पास उपलब्ध है उस पर संतोष करे। मतलब वो उस भौतिक सुख को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता तो वो सुखी रहता है, क्योंकि बुद्धि में दोष आता नहीं, गलत काम करता नहीं। आज आपके पास 1,00,000 करोड़ रुपए है, जेल में बैठे हैं, बैठे नहीं बैठे, सो मैनी पीपल, किसी के पास 10,000 करोड़ है, किसी के पास 4,000 करोड़ है, किसी के पास 5,000 करोड़ है, किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 1,00,000 करोड़ है। मिला क्या? बैंगलोर से निकल के, पैलेशियल बैंगलोर से निकल के तिहाड़ जेल में बैठे हैं। किस लिए बैठे? क्योंकि डिजायर्स अनलिमिटेड, सुख प्राप्ति की इच्छा, सुख की प्राप्ति की कामना। अरे तेरे पास एक गाड़ी है बढ़िया हुई है ना, मकान है रहने के लिए, तो एक आदमी है कितने बिस्तरों पे सोएगा, कितने बिस्तरों पे सोएगा। चलो चार रूम तूने गेस्ट के लिए बना लिए, चार रूम घर वालों के लिए बना लिए, 10 रूम का तूने एक पैलेशियल हाउस बना लिया। नहीं, ऐसे मेरे पास हर शहर में होना चाहिए, होटल्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जाने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है। खाने के लिए भाई डॉक्टर ने ना देसी घी मना कर दिया है ना, गाय का घी खा लो भैया बड़ा अच्छा होता है। नहीं नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया। क्या खाते हो? मैं आजकल रिफाइंड तेल खाता हूँ, वो भी डॉक्टर ने कहा है 1 दिन में 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना। खाने में लिमिटेशन आ रही है, खा सकते नहीं है, और सामान जो है वो जिंदगी भर का, उम्र भर का इकट्ठा किया हुआ है, ये नहीं पता कौन सी चीज कहाँ है। कितनी साड़ियां हैं जी आपके पास? 3000। कितने जूते के जोड़े हैं, सैंडल कितने हैं जी? 2000। तुम देख नहीं पाओगे, सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, ये हाल है। सुख की कामना, और पीछे CBI लगी हुई है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के लिए केस चल रहा है। ये सुख की कामना अल्टीमेटली आपको इस विशियस साइकिल में उलझा देती है। मिला और चाहिए, मिला और चाहिए, मिला और चाहिए, मिला और चाहिए, और उसी के लिए कर्म हो रहे हैं। तद अनुसार व्यक्ति कर्म करता चला जाता है, परंतु एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट सुख नहीं है, एंड रिजल्ट है दुख। क्योंकि जो ही वह सुख के लिए कार्य प्रारंभ करता है, उसकी दुख की अवस्था आरंभ हो जाती है। अब इसमें एक बात आती है, एक जो शब्दार्थ दिया है, इसमें एक शब्द आया है संकल्प, यह कर्मणि। संकल्प क्या है? व्हाट इज संकल्प? संकल्प किसे कहते हैं? कभी आपने देखा होगा जो ट्रेडिशनल पूजा होती है, घर में जब हवन कराते हैं, ट्रेडिशनल पूजा कराते हैं, तो पंडित जी आते हैं बोलते संकल्प करिए। संकल्प क्या है? कमिटमेंट। संकल्प है कमिटमेंट, कि नो यू आर कमिटेड टू समथिंग। वो कमिटमेंट कब आती है, उसका ओरिजिन कहां से है, संकल्प का ओरिजिन रूट क्या है? रूट है, इसको शास्त्र में कहा गया है स्फुरना। स्फुरना का मतलब यह है कि जैसे किसी व्यक्ति ने, उसकी इंद्रियों ने किसी इंद्र विषय के साथ संयोग स्थापित किया गया, तो जिस बात को जो है भगवद गीता में कहा गया है, ध्यातो विषयान पुंसा संग ते शुभ जायते, संगात संजायते कामात कामात क्रोध अभिजायते, मतलब जैसे ही किसी वस्तु के साथ आपकी इंद्रियों का संसर्ग होता है, तो एक सूक्ष्म कामना पैदा हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, फिर सूक्ष्म कामना आ जाती है। आसक्ति का जो लेवल है, उसमें एक स्फुरना आती है कि यस आई शुड हैव इट। जब कामना आती है, तो कामना फिर जब फिक्स हो जाती है, यस मुझे चाहिए ही, चाहिए भी नहीं, चाहिए ही, इट बिकम संकल्प। अब कमिटमेंट है, मुझे चीज चाहिए। तो संकल्प जो है वो व्यक्ति करता है किस काम के लिए? दुख से छुटकारा पाने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए। कमिटमेंट करता अपने आप से, सेल्फ कमिटमेंट है कि मेरे को दुख से छुटकारा पाना है। मतलब जो मेरे को इस भौतिक संसार के अंदर एंजॉयमेंट के लिए अनफेवरेबल चीजें, मुझे उनसे छुटकारा पाना। एसी वाली गाड़ी चाहिए। कौन सी गाड़ी है जी आपके पास? एक मारुति 800 है, एसी नहीं है। तो उसको आप सुख की प्राप्ति के लिए रखना चाहोगे कि छुटकारा पाना चाहोगे? क्या चाहोगे? सुख की प्राप्ति के लिए गर्मी का मौसम है, 44 डिग्री टेम्परेचर है, तो आपको एसी वाली गाड़ी चाहिए। तो सुख की प्राप्ति के लिए आपको एक फेवरेबल, जो आपके मन और शरीर के फेवरेबल चीज है वो चाहिए, परंतु जो अनफेवरेबल है उसको आप त्याग देना चाहते हो, निकाल देना चाहते हो, मतलब दुख से छुटकारा पा। बड़ा दुखी करती है जी गाड़ी, छुटकारा पाओ, बेचो इसको, कबाड़ी को दे दो, इसे यूजलेस थिंग, मेरे को परेशान करती है। तो दुख की प्राप्ति कोई नहीं चाहता, दुख से छुटकारा पाना चाहता है, सुख की प्राप्ति चाहता है। परंतु यहां जो है एक बड़ी अच्छी बात कही प्रभुपाद जी ने कि कोई इसे नहीं बदल सकता। अतः श्रेयस्कर होगा कि मनुष्य अपना समय कृष्ण भावनामृत में, आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में लगाए, मनुष्य होकर भी अपने समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके आपको अपने जीवन का उद्देश्य, ये शरीर क्यों मिला है, इस शरीर को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। इसके ज्ञान का मतलब क्या है कि उसे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अथो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म भगवान के बारे में जिज्ञासा करे और अपने बारे में जिज्ञासा करे। याज्ञवल्क्य जी गार्गी को कहते हैं, अगर कोई मनुष्य, उपनिषद की बात है, अगर कोई व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ब्रह्म को जानने का प्रयास नहीं करता तो वह कृपण है। कृपण का अर्थ है कंजूस। कंजूस शब्द हम इस्तेमाल करते हैं साधारण भाषा में कि पैसा नहीं खर्चता है, बड़ा कंजूस आदमी है, मतलब पैसा है परंतु खर्च नहीं करता, सुविधा है परंतु सुविधा इस्तेमाल नहीं करता। तो मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है उसमें सुविधा है मेरे पास कि मैं इस भौतिक संसार को छोड़ के भगवान के धाम जा सकूं, और धाम जाने का मार्ग, धाम जाने का ज्ञान, धाम जाने का पथ जान सकूं और उस पर चल सकूं, परंतु व्यक्ति चलता नहीं है, इसलिए उससे ज्यादा कृपण उसे और कोई नहीं। यही बात जो है बाबा जी कहते हैं कि मनुष्य होकर उसे अपने समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए। यह अच्छा होगा कि तथा कथित सुख की कामना किए बगैर कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में इस जीवन का उपयोग किया जाए। अगर आपके भाग्य में सुख लिखा है पैसे का, तो आपको मिलेगा। कई बार हम लोग कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या सहायता कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं मेरे लिए, मैं तो गांव में भूखा नंगा था, मैं भगवान ने मेरे लिए क्या कर दिया। पीपल लेमेंट, बड़ा शोक प्रकट करते हैं। मेरे आज 30 साल के इतिहास में, इस्कॉन में आए मुझे 30 साल हो गए हैं, मैंने असंख्य भक्तों को देखा, एक नहीं बहुत भक्तों को देखा है जो गांव से आए। गांव में हालात ठीक नहीं थे, सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं थी, परंतु किसी तरीके से मन जो है उनका कृष्ण भावनामृत में लग गया। मन मृदंग बजाते रहे, करताल बजाते रहे, कीर्तन करते रहे, पुजारी का काम करते रहे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज वो भक्त जो हैं करोड़पति, भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति नहीं छोड़ी, भक्ति भी कर रहे हैं। और अगर कहें हम कि लक्ष्मी के अनुसार, मतलब पैसे के अनुसार, तो पैसे के अनुसार जो है करोड़पति है, और वो पैसा जो बना रहे हैं उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसका एक मेजर चंक, बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है कृष्ण भावनामृत में ही खर्च हो। तो वो जो एक दोष देते थे भगवान को कि मेरे लिए क्या किया, वो भगवान ने ऑटोमेटिकली अनंत चिंतो यंतो मां ये जरा परिउपासते, मैं योग क्षेमम वहामी है, मैं योग क्षेम बहन करता हूँ, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं, जो नहीं है उसे मैं देता हूं। इसलिए व्यर्थ का प्रयास करना और दुख को कम करने की कोशिश करना, सुख को प्राप्त करने की कोशिश करना, ये बेकार है, व्यर्थ है। प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। मन हमारा कृष्ण भावनामृत में रहना चाहिए, बाकी कार्य कृष्ण का है, जैसा रखें वैसा रहो। वो कहें ब्रह्मचारी बनो साल में दो जोड़े मिलेंगे ऐसी आपकी इच्छा, प्रसाद मिल रहा है ना, हाँ जी छत मिली हुई है ना, बहुत बढ़िया बात है, और क्या चाहिए भाई, रोटी कपड़ा मकान तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तीनों पूरी हो रही है, हो रही नहीं हो रही है आपकी, छत मिली हुई है, प्रसाद मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। परंतु अभी भी इस संसार के अंदर जो है इस बात को लोग समझने के लिए तैयार नहीं। अगर किसी का बालक जो है ब्रह्मचारी बन जाता है तो माता पिता आके मंदिर के अंदर वो हायतौबा मचाते हैं कि मंदिर का माहौल ही खराब हो जाता है उस वक्त, समझ नहीं पाते हैं कि मेरा पुत्र अगर जो है ब्रह्मचारी बन गया है तो इसका लाभ 21 पीढ़ियों तक, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं 21 पीढ़ियों तक लाभ मिलता है, इस बात को हम लोग समझने के लिए तैयार हैं। इसका परपट है बहुत बढ़िया, मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को एक बार घर जाके अवश्य पढ़ना चाहिए इनके पास भागवतम है, और इस पर मनन करना चाहिए। इसमें सिंपल सिंपल बातें जो हैं बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने लिखी हैं, और वो अगर जीवन में हम सोच समझ के लगाएं तो हमको जीवन के अंदर है अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी, और कृष्ण भावनामृत में हमारा विकास सही तरीके से जल्दी बिल्कुल हमारी डिजायर के अनुरूप होगा। हरे कृष्णा। श्री भगवान की, राधिका रमन भगवान की, गौर निताई भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदी।